आकाश नाम के द्रव्य का निरूपण हो चुका है, अब काल नाम के द्रव्य का निरूपण होना है। काल माने जैसा कि आप समझते हैं कि समय, तो आज आपको काल के बारे में शास्त्रीय दृष्टिकोण पता चलेगा, उसमें भी खास करके न्याय शास्त्र की जो दृष्टि है। सबसे पहले लक्षण बताया कि कालोपि दिग विपरीत परत्वा परत्वानुमेय, काल क्या है तो अनुमेय, क्योंकि प्रत्यक्ष तो काल का होता नहीं है तो वह अनुमेय होता है, अर्थात अनुमान प्रमाण के द्वारा लभ्य होता है। अब अनुमान प्रमाण जो किया के द्वारा कैसे अनुमेय है, उसके लिए हेतु बताते हैं कि दिग विपरीत परत्वा परत्व। पहले हम परत्वा परत्व समझ लें, पहले कभी मैंने संक्षेप में बताया भी होगा। परत्वा परत्व जो है, परत्व कहते हैं ज्येष्ठत्व को और अपरत्व कहते हैं कनिष्ठत्व को। ज्येष्ठ और कनिष्ठ तो आप लोग समझते होंगे, जो बड़ा होगा वह हो गया पर, आज जो छोटा होगा वो होगा अपर, और पर में परत्व रहता है, अपर में अपरत्व रहता है। यह जो परत्व और अपरत्व का निर्धारण होता है उसमें दो कारण होते हैं, एक तो काल कारण होता है और एक दिक मतलब दिशा कारण होता है। इसको हम उदाहरण के तौर पर आप समझें कि अब जैसे बड़ा भाई और छोटा भाई है, तो बड़े भाई में परत्व रहेगा और छोटे भाई में अपरत्व रहेगा, उसमें हेतु क्या है? तो हेतु काल हेतु है, क्योंकि जो बड़ा भाई है वह पूर्व काल में उत्पन्न हुआ और जो छोटा भाई है वह पर काल में उत्पन्न हुआ। तो जो पूर्व काल में होता है वह उसमें परत्व होता है और जो पर काल में होता है उसमें अपरत्व रहता है। इसी तरह से इसमें तो कारण हुआ काल, माने ज़्यादा टाइम तक जो रहा उसमें परत्व, जो कम टाइम तक रहा उसमें अपरत्व, सामान्य भाषा में कहें तो। और दिशा भी जो है ना परत्व अपरत्व में कारण होता है। अब जैसे कोई दूर रहता है और कोई नज़दीक रहता है, तो जो नज़दीक रहता है उसमें हो जाएगा क्या? अपरत्व, और जो दूर रहता है उसमें हो जाएगा परत्व। तो यह जो परत्व और अपरत्व है, हैं, इसका निर्धारण कैसे किया गया? तो दिक के आधार पर, दिशा के आधार पर। तो दिशा में, दिशा के कारण ही जो है कोई समीप रहता कहलाता है और कोई दूर कहलाता है। और इसको जो है इन्होंने बाद में स्वयं भी उदाहरण के द्वारा समझाया है। तो आपने ये देखा कि परत्व और अपरत्व माने ज्येष्ठत्व और कनिष्ठत्व जो है उसमें दो हेतु होते हैं, एक काल होता है और एक दिक होता है, बाकी और कोई तीसरा हेतु नहीं है परत्व अपरत्व में। तो काल के लक्षण में बताया कि दिग विपरीत परत्व अपरत्व माने दिशा के को छोड़ करके जो दिशा के कारण न हो उसको कहते हैं दिग विपरीत। तो दिशा के कारण न होने वाला जो परत्व और अपरत्व है, समझ रहे हैं कि नहीं, दिशा के कारण जहाँ परत्व अपरत्व होगा उसको कहेंगे दिंग मूलक परत्व अपरत्व, और दिशा के कारण जहाँ परत्व अपरत्व नहीं होगा उसको कहेंगे दिग विपरीत परत्व अपरत्व। तो दिग विपरीत जो परत्व अपरत्व होता है उस हेतु से काल का जो है अनुमान किया जाता है। इसमें भी बहुत सारे गुण होते हैं, तो वो बताया आगे, संख्या गुण, परिमाण गुण, पृथक्त्व गुण, संजोग गुण और विभाग गुण, इन गुणों से यह काल जो है युक्त होता है। एक है और यह काल एक होता है, नित्यो विभुश्च और नित्य व्यापक होता है। अब आगे स्वयं प्रश्न कर रहे हैं कि कथम अस्य दिग विपरीत परत्वा परत्वानुमेयत्वम्। कि किस प्रकार जो है यह दिग विपरीत परत्व अपरत्व से ये अनुमेय होता है। तो जवाब देते हैं उच्यते। क्या उच्यते? तो सन्निहिते वृद्धे सन्निधानात्, ताकि कोई वृद्ध व्यक्ति सन्निहित है, सन्निहित है मतलब पास में बैठा हुआ है, तो सन्निहिते वृद्धे सति, पास में वृद्ध के बैठे होने पर भी सन्निधानात, उनके उस वृद्ध के साथ तो हमारा सन्निधान है माने हमारा सामीप्य है, फिर भी उस वृद्ध में सन्निधान होने के कारण क्या होना चाहिए? अपरत्व होना चाहिए उसमें। वह वृद्ध जो है वह अपरत्वार्ह है, अपरत्व अर्ह है, अर्ह मतलब योग्य। मैंने बताया था ना कि जो पास में रहता है उसमें अपरत्व होता है और जो दूर में रहता है उसमें परत्व रहता है। इसको आप ना नोट कर लें, क्योंकि ये परत्व और अपरत्व में कंफ्यूजन भी होता है, बोलने में भी कई बार आगे पीछे हो जाता है। तो ये ध्यान रखिए कि जो समीप में रहेगा उसमें अपरत्व होगा और जो दूर में रहेगा उसमें परत्व रहेगा। यहाँ की पंक्ति देख लीजिए तो फिर कंफ्यूजन नहीं होगा। ये कहते हैं कि सन्निहिते वृद्धे सन्निधानात अपरत्वार्हे, माने जो सन्निहित वृद्ध है उस वृद्ध के साथ सन्निधानात माने सन्निधान होने के कारण, सामीप्य होने के कारण अपरत्वार्हे, वह वृद्ध जो है वह अपरत्व के अर्ह है, वह अपर कहलाने के योग्य है। किंतु तद विपरीतम परत्वम प्रतीयते, किंतु अपरत्व के विपरीत जो परत्व है उस परत्व की प्रतीति होती है वृद्ध में। क्योंकि मैंने कहा था जो ज्येष्ठ होता है उसमें परत्व होता है और जो कनिष्ठ होता है उसमें अपरत्व होता है। तो युवा व्यक्ति है, युवक व्यक्ति है और वृद्ध व्यक्ति है, तो वृद्ध व्यक्ति समीप में होने पर भी उस युवक की अपेक्षा वृद्ध में परत्व की ही प्रतीत होती है, परत्व का ही व्यवहार होता है, ज्येष्ठत्व का ही व्यवहार होता है, जबकि वह पास में रहता है। और युवक में जो है अपरत्व का व्यवहार होता है जबकि वो दूर में रहता है। तो इस तरह से यहाँ जो परत्व का व्यवहार हुआ उस वृद्ध व्यक्ति में, ज्येष्ठत्व का जो व्यवहार हुआ वृद्ध व्यक्ति में, उसका कारण क्या था? तो काल ही कारण है, उसमें दिशा कारण नहीं है। दिशा अगर कारण होता तो सन्निधान होने के कारण उसमें अपरत्व की प्रतीति होती, लेकिन दिशा कारण यहाँ नहीं है, इसीलिए सन्निधान होने के बावजूद भी उसमें अपरत्व की प्रतीति नहीं होती है, बल्कि अपरत्व के विपरीत परत्व की प्रतीति होती है। यह जो दिग विपरीत परत्व की प्रतीति हुई उसका हेतु कौन है, उसका कारण कौन है? उसका कारण जो है वह है काल। इसी तरह से जैसे यहाँ वृद्ध में बताया ना कि वृद्ध जो है पास में होते हुए भी वृद्ध में परत्व की प्रतीति होती है, उसी तरह से व्यवहिते यूनि, यूनि मतलब युवके, युवक व्यक्ति अगर व्यवहित है, व्यवहित है मतलब दूर में है, तो वहाँ पर व्यवधान आप, तो उस युवक व्यक्ति से सन्निधान नहीं हुआ बल्कि व्यवधान हो गया। तो व्यवधान जहाँ हो उसमें परत्वार हुआ होता है, माने उसमें परत्व होना चाहिए दिशा के कारण, लेकिन ऐसा नहीं होता, तद विपरीत जो है अपरत्व प्रतीत होता है। तो समीप में रहने वाले वृद्ध में भी परत्व की प्रतीति होना, दूर में रहने वाले युवक में भी जो है अपरत्व की प्रतीति होना, यह जो प्रतीति है इसी प्रतीति से काल जो है वह अनुमेय होता है। वही यहाँ कहा कि तदिदम तत्तद विपरीतम परत्वम अपरत्वम च कार्यम, इस तरह से तत्तद विपरीतम माने दिग विपरीतम, दिग विपरीत जो वृद्ध में परत्व की प्रतीति होती है और दिग विपरीत जो युवक में अपरत्व की प्रतीति होती है, वह कैसा वृद्ध युवक है ये ध्यान में रखना है। वृद्ध जो है वह सन्निहित है और युवक जो है वह व्यभिहित है। तो उस सन्निहित वृद्ध में जो दिग विपरीत परत्व की प्रतीति हुई और व्यवहित युवक में जो दिग विपरीत अपरत्व की प्रतीति हुई, वह जो परत्व अपरत्व है तत्कार्यम, वह परत्व अपरत्व कार्य है और उस कार्य में तत्कारणस्य दिगादेह असंभवात्, उस कार्य के प्रति जो कारण दिक् है उसका वह यहाँ पर असंभव है, क्योंकि असंभव तो है ही ना, क्योंकि वह तो उल्टा ही है, बल्कि पास में है, दूर में है। तो इस तरह से कालम एवं कारणम अनुमापयति, इस तरह से वह जो दिग विपरीत परत्व अपरत्व है वही काल रूपी कारण का अनुमान कराता है। सच एकः अपि, वह जो काल है वह एक ही है, फिर भी वर्तमान अतीत भविष्यत क्रिया उपाधि वसात वर्तमान आदि व्यपदेशम लभते। तो कहा कि काल एक ही होता है, तो यहाँ पर प्रश्न उठेगा ना कि बचपन से ही हम लोग सुनते आ रहे हैं कि काल तीन प्रकार का होता है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल, और यहाँ आप कह रहे हैं कि सच एक कि काल जो है वह एक होता है, तो कैसे जो है ना ये बात सही ठहरेगी। तो इसके लिए उन्होंने बताया कि वस्तुतः काल तो एक ही है, लेकिन काल में होने वाली जो क्रिया है वह क्रिया तीन प्रकार की होती है, वर्तमान क्रिया, अतीत क्रिया, अतीत क्रिया माने भूत क्रिया, और भविष्यत क्रिया। तो ये जो क्रिया है ये काल में ही होती है, तो उस क्रिया के कारण ही जो है काल में तीन प्रकार का भेद प्रतीत होता है, ऐसे वस्तुतः काल एक ही है। यहाँ जो क्रिया है वर्तमान अतीत और भविष्यत क्रिया, इसको उपाधि शब्द से कहा गया है, उपाधि कहते हैं धर्म को। तो काल एक है, लेकिन काल रूपी धर्मी में रहने वाला जो वर्तमान क्रिया, अतीत क्रिया और भविष्यत क्रिया रूपी धर्म जो है, उपाधि जो है, उस उपाधि के वश से, वश मतलब अधीन, उस उपाधि के अधीन जो है वर्तमान आदि व्यपदेशम लगते, वर्तमान आदि व्यपदेश, व्यपदेश मतलब नाम, तो वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल, इस तरह से व्यपदेश का लाभ एक काल में ही हो जाता है। और उदाहरण भी दिया यहाँ कि पुरुषः इव, जैसे एक ही पुरुष है, एक ही व्यक्ति है, लेकिन अगर वह पाक क्रिया करता है तो पाक क्रिया रूपी उपाधि के वश से उसको पाचक कहा जाता है, और वही पुरुष जब पाठ क्रिया करता है तो पाठ क्रिया रूपी उपाधि के वश से उसको पाठक कहा जाता है। तो पुरुष तो एक ही है, लेकिन पाक क्रिया रूपी उपाधि के कारण वह पुरुष कभी पाचक कहलाता है और कभी पाठ क्रिया रूपी उपाधि के वश से कभी वह पाठक कहलाता है। जैसे एक ही पुरुष क्रिया, यहाँ पर पाक क्रिया और पाठ क्रिया के उपाधि के कारण पाचक पाठक कहलाता है, ऐसे ही एक ही काल जो है वह वर्तमान अतीत भविष्यत क्रिया रूपी उपाधि के कारण जो है वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल, इस तरह से तीन प्रकार के व्यपदेश को लाभ करता है, तीन प्रकार के नाम को लाभ करता है। आगे कहते हैं कि नित्यत्व विभुत्व च अस्य पूर्ववत्, इसमें काल में जो नित्यत्व होता है और विभुत्व होता है यह पूर्ववत है। मतलब जैसे पहले चर्चा की गई थी कि किसी को नित्य क्यों माना जाता है, क्योंकि उसमें विभुत्व रहता है। विभुत्व का मैंने बताया था, विभुत्व माने व्यापकत्व। ये व्यापकत्व क्या है, विभुत्व क्या है, तो बताया था कि जितने भी मूर्त द्रव्य हैं सारे मूर्त द्रव्यों के साथ एक ही साथ संयोग संबंध से जो जुड़ा हुआ होता है उसको हम विभु पदार्थ कहते हैं। तो काल भी जो है जितने भी मूर्त द्रव्य हैं सारे मूर्त द्रव्यों के साथ एक ही साथ जो है संयोग संबंध से जुड़ा होता है, इसलिए इसमें विभुत्व माना जाता है, और विभुत्व होने के कारण ही जो है इस काल को हम नित्य मानते हैं। इसलिए कहा कि नित्यत्व विभुत्व च अस्य पूर्ववत, कि पहले की तरह ही जो है इस काल में भी विभुत्व और नित्यत्व समझना चाहिए। तो कुल मिलाकर के समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि ज्येष्ठत्व और कनिष्ठत्व का जो व्यवहार होता है, इसको न्याय की भाषा में कहेंगे कि परत्व और अपरत्व का जो व्यवहार होता है, उस व्यवहार का कारण काल ही है। यद्यपि दो कारण होते हैं, दिक् भी कारण होता है और काल भी कारण होता है। तो इसीलिए लक्षण में इन्होंने दिग विपरीत परत्व अपरत्व कहा कि जहाँ पर दिक कारण न हो और परत्व अपरत्व का व्यवहार होता हो, ऐसे परत्व अपरत्व के लिए काल जो है वह आवश्यक होता है और उसी से काल का अनुमान होता है। तो यहाँ पर आपने ये समझ लिया कि जो पहले पैदा हुआ है उसमें परत्व है, जो बाद में पैदा हुआ है उसमें अपरत्व है, चाहे वह पास में रहे दूर में रहे उससे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस तरह से काल का निरूपण जो है आज के पाठ में यहाँ पर संपन्न हुआ। फिर अगले पाठ में हम दिक का निरूपण पढ़ेंगे।